के कारण देवताओं के पास भूमि देवी जाती हैं गाय का रूप लेके, और फिर भगवान के अलग अलग अवतारों के कारण का भी वर्णन करते हुए नारद मुनि की कथा भी हम सब ने सुनी कि कैसे नारद मुनि ने श्राप दिया भगवान को और भगवान को फिर ये राम अवतार लेना पड़ा। यह कहना चाहिए कि भगवान की इच्छा थी इसीलिए नारद मुनि को श्राप देना पड़ा, इच्छा नहीं थी नारद मुनि की। और फिर आगे रावण के जन्म की कथा पिछली बार कर रहे थे, कैसे रावण और उसके अन्य भाइयों का जन्म हुआ। ये वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित रामायण जो मूल काव्य आदि काव्य कहलाता है उस पर आधारित चर्चा हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य स्थानों से भी, अन्य रामायण के संस्करणों से भी थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आदि काव्य ये वाल्मीकि रामायण को माना गया है, उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। और उसका कारण ये है कि वाल्मीकि मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंपरा में नारद मुनि इत्यादि से श्रवण करते हैं और इसीलिए जो प्रस्तुत करते हैं वो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत हैं। वाल्मीकि मुनि का गुणगान करते हुए कहा गया है, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनि की तुलना एक कोयल से की गई है, कोकिला, कि वाल्मीकि मुनि एक कोयल है और वो राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, राम नाम का जो मधुर अक्षर है ये बहुत मधुरता है राम के नाम में, उस राम के नाम को आरुह्य कविता शाखाम, जैसे वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठकर कोयल कुह कुह करती है, ऐसे ही कविता शाखाम, ये जो कविता रामायण वाल्मीकि मुनि ने लिखी, तो इस कविता रूपी शाखा पर बैठकर वो राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, राम नाम का मधुर अक्षर बारंबार वो उच्चारण कर रहे हैं। और राम के नाम में उनको कितनी रुचि है इसका भी वर्णन किया है, यह पिबन सततम रामचरितामृत सागरम अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्रचेत स अकल्मषम। उनके लिए कहा गया है कि वो सदैव राम नाम का अमृत पीते रहते हैं और कभी भी तृप्त नहीं होते। भक्तों के यही तो लक्षण है कि वे सदैव भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और कभी भी उससे तृप्त नहीं होते। और ये इनकी तुलना एक सिंह से भी की गई है, वाल्मीकि की तुलना, वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः श्रृण्वन् राम कथा नादं को न याति पराम गतिम्, कि एक सिंह के समान है वाल्मीकि मुनि और नाद कर रहे हैं, जैसे सिंह दहाड़ता है तो ऐसा राम नाम का नाद उन्होंने किया है। और को न याति पराम गतिम्, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस नाद को सुनकर, जैसे शेर की नाद दहाड़ को सुनकर हर कोई घबरा जाता है, ऐसे ही राम नाम की दहाड़ या नाद को सुनकर हर कोई पवित्र हो जाता है। कौन याति पराम गतिम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस नाम को सुनकर पर गति या पराम गति को प्राप्त नहीं करता। तो ऐसी ये वाल्मीकि रामायण है। हम लोग रावण के जन्म की चर्चा करते हुए यहाँ तक आए थे कि रावण इत्यादि का जन्म हुआ और उनकी जो माता थी कैकसी, उनके पिता सुमाली, वो नीचे रहा करते थे, नीचे के लोकों में। और फिर रसातल में भी इसलिए रहते थे क्योंकि एक समय भगवान विष्णु ने उनको परास्त किया था और फिर उनको बाध्य किया नीचे रहने के लिए। उससे पहले वे लंका में रहा करते थे तो फिर से जब रावण इत्यादि का जन्म हुआ तो सुमाली इत्यादि जितने भी असुर थे वो फिर से लंका में आ गए। और सुमाली ने आते ही रावण से कहा कि देखो रावण, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तो क्यों नहीं तुम कुबेर को हरा देते हो। कुबेर के देखो कैसे वो पुष्पक विमान में आराम से घूमता है, कितना ऐश्वर्य है उसके पास, तो तुम उसको हरा दो, ये तुम्हारा राज्य है। लंका पहले से राक्षसों की राजधानी रही है, तो इसलिए तुम इसे परास्त करो। लेकिन रावण ने मना कर दिया। रावण ने कहा नहीं, कुबेर तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका कैसे वध कर सकता हूं या कैसे उनको परास्त कर सकता हूं, और उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया भी नहीं है। तो उस समय सुमाली चुप हो गए, कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि रावण तैयार नहीं है अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे सुमाली अपने मंत्रियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा रावण के हृदय में ये संदेश भेजने लगे, रावण के कानों में ये बातें डालने लगे कि तुम्हें कुबेर को परास्त करना है, कुबेर यक्षों का राजा बना बैठा है और तुम्हें जो संपत्ति मिलनी चाहिए वो कुबेर ने ले रखी है। ऐसी बहुत सी बातों को उसके हृदय में डाल दिया, जिससे एक समय रावण तैयार हो गया और उसने उस मंत्री से कहा जो उसको ये संदेश दे रहा था, ठीक है जाओ कुबेर के पास और कुबेर से जाकर कहो कि जो भी संपत्ति है ये मेरी है, मुझे लौटा दे, नहीं तो युद्ध करना होगा। देखिए बुरे संग का कितना असर होता है। रावण जानता था कि मेरे बड़े भाई हैं कुबेर, मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन बारंबार ऐसे बुरे संग से फिर वो भी प्रभावित हो गया और अंततः उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए हमें अपना संग बहुत अच्छा रखना चाहिए। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में हमें चेतावनी देते हैं, जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। जब हम जनसंग करते हैं, ऐसे लोगों का संग जो भक्त नहीं है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जो दुर्जन है, जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय ले रखा है, अर्थात जिनके हृदय में केवल धोखा देना, केवल अपने को ही स्थापित करना, केवल अपनी ही प्रतिष्ठा की चिंता करना, ऐसे लोगों का संग करने से फिर हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि रावण जैसा राक्षस एक ब्राह्मण से आया, उनके पिता तो ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण से राक्षस उत्पन्न हो जाता है संग के कारण, बुरे संग के कारण। रावण का संग बुरा हुआ और फिर रावण ने सोच लिया कि ठीक है, अब तो मुझे पूरी लंका पर राज्य करना है। तो ये एक चेतावनी है। रूप गोस्वामी आदि आचार्यों ने अपने ग्रंथों में हमें स्पष्ट चेतावनी दी है, लेकिन रामायण जैसे ग्रंथों में भी ये चेतावनियां छुपी हुई हैं। इन लीलाओं के माध्यम से वाल्मीकि मुनि हमें चेतावनी दे रहे हैं कि देखो संग कितना खराब होता है, हमें अपना संग बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम जिस प्रकार की प्रगति चाहते हैं उसी प्रकार का संग होना चाहिए। अगर हम दुष्ट बनना चाहते हैं, अगर हम पापी बनना चाहते हैं, तो दुष्टों और पापियों का संग करना चाहिए, बहुत अच्छे दर्जे के पापी बनेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, ठीक है भक्त नहीं भी, कभी कभी लोग कहते हैं कि भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ठीक है एक अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं तो भी अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ये संग ही है जो हमें या तो बंधन में डालता है या मुक्त कर सकता है, या तो कष्टों में डालता है या सुख प्रदान करता है, केवल संग के कारण। आगे भी हम रामायण में संग के विषय में बहुत चर्चा करने वाले हैं, बहुत से प्रसंगों में इस संग के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। तो खैर रावण ने फिर संदेश भेजा और कुबेर ने सोचा कि मुझे क्यों अपने ही भाई से लड़ना है, तो वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने पिता से पूछा कि ऐसे संदेश भेजा है रावण ने। हालांकि कुबेर शक्तिशाली थे, चाहते तो रावण से युद्ध कर सकते थे, लेकिन देखिए दोनों की मानसिकताओं में अंतर। कुबेर ने युद्ध नहीं किया, कुबेर गए पिता के पास, पिता से पूछा और पिता ने कहा कि हाँ रावण मेरे पास भी आया था, मैंने उसे समझाया लेकिन वो समझा नहीं, इसीलिए अच्छा यही है कि ऐसी स्थिति में तुम उसको लंका दे दो। तो कुबेर ने लंका दे दी। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि रावण ने युद्ध करके लंका ले ली, ऐसा नहीं है। कुबेर ने अपने पिता के कहने पर फिर लंका को दे दिया रावण को कि ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उसने अपना स्वभाव प्रकट किया। तो दोनों पुत्र थे, कुबेर भी पुत्र थे और रावण भी पुत्र थे एक ही पिता के, लेकिन रावण संग के कारण विनाश की ओर चलने लगे और कुबेर अपने अच्छे स्वभाव और अच्छे संग के कारण उन्होंने अच्छे मार्ग को पकड़ा, पिता की आज्ञा का पालन किया और फिर उस स्थान को त्याग दिया और फिर वे चले गए अलकापुरी। उन्होंने एक अपनी अलग नगरी बसाई, यक्षों की नगरी अलकापुरी, इंद्र की नगरी के समान ही बड़ी ऐश्वर्यशाली नगरी है वो। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक ही पिता से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में भी कैसे स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, एक रावण और एक कुबेर हो सकते हैं। कुबेर का हम लोग गुणगान करते हैं, देवता मानते हैं, और रावण तो राक्षस निकला। तो इसीलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो खैर कुबेर चले गए, रावण को दे दिया और फिर रावण ने बहुत आतंक मचाना प्रारंभ किया। अलग अलग सुमाली इत्यादि जितने भी राक्षस थे उन्होंने और रावण को बड़ा बढ़ावा दिया कि रावण तुम जो कर रहे हो ठीक है, तुम राजा हो। और फिर रावण तपस्या भी करने लगा, बहुत कड़ी तपस्या की थी रावण ने, रावण कुंभकर्ण विभीषण और शूर्पणखा सबने तपस्या की और बड़ी कड़ी तपस्या। और फिर तपस्या के बल के कारण फिर रावण को सब कहने लगे कि तुम ही राजा बन सकते हो, और जब सब कहने लगे तो रावण ने भी स्वीकार कर लिया। अब फिर रावण राक्षस राज कहलाया, सब जगह आतंक फैलाने लगा। ब्रह्मा जी से वरदान तो प्राप्त था ही, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रावण ने वरदान मांगा था कि मनुष्य वानरों को छोड़कर जितने भी हैं, चाहे देवता हों, गंधर्व हों, यक्ष हों, किन्नर हों, इन सबको मैं परास्त कर सकूं, किसी के द्वारा मारा नहीं जाऊं। तो अब इस अहंकार के चलते, इस वरदान के चलते तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया रावण ने। प्रश्न ये आता है कि देवता क्या इतने शक्तिशाली नहीं थे जो रावण के अधीन हो गए? देवताओं की हम बात करते हैं, इंद्र इत्यादि बड़े शक्तिशाली हैं, तो कैसे ये असुर इतना शक्तिशाली हो गया, कैसे ये राक्षस इतना शक्तिशाली हुआ? इसका वर्णन आगे आता है। जब दशरथ महाराज यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में देवता आते हैं और देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, ये वाल्मीकि मुनि ने वर्णन किया है कि देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने वरदान दिया है और आपके मान को रखने के लिए हम उसके सारे अत्याचारों को सहन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? देवता चाहते तो रावण को भी हरा सकते थे, लेकिन देवताओं ने मान दिया ब्रह्मा जी के शब्दों को, देवताओं ने मान दिया ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान को जो रावण को उन्होंने दिया। तो इसीलिए रावण बड़ा शक्तिशाली हो गया, तीनों लोकों में सब स्थानों पर हाहाकार, भक्त जहां पर हों, ब्राह्मण जहां पर हों, उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, यज्ञ बंद करवा दिए, क्योंकि उसने सोचा कि जहां भी ये ब्राह्मणों को शक्ति मिलती है जो मेरा विरोध करते हैं, इनको यज्ञ से शक्ति मिलती है, आराधना से शक्ति मिलती है, तपस्या से शक्ति मिलती है, ये सब बंद करा दो। हम सबको इन्हीं चीजों से बल मिलता है। खाना पीना तो हम केवल शरीर को बनाए रखने के लिए करते हैं, असली बल आता है तपस्या से, असली बल आता है आराधना से, प्रार्थना से और यज्ञ से। इस कलयुग के लिए यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खैर रावण ये सब कराने लगा और फिर भगवान राम के आने का समय हो गया। भगवान श्री राम जब आते हैं, जैसे हम पिछली बार भी वर्णन कर रहे थे कि बहुत कष्ट लोगों को हुआ, ब्राह्मणों को, राक्षसों का कितना सारा कष्ट सहना पड़ा, और अब भगवान के आने का समय हुआ, तो दशरथ महाराज के हृदय में पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने की कामना हुई। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि इस समय करीब 60,000 वर्ष के थे दशरथ महाराज, तो क्यों नहीं पहले ही उन्होंने ये इच्छा की। वो तो जानते थे कि अगर मैं यज्ञ करूंगा, पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो पुत्र उत्पन्न होगा, तो पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों उनके हृदय में कामना नहीं आई। क्योंकि भगवान के आने का समय नहीं हुआ था, इसीलिए इतने वर्षों तक दशरथ महाराज राज्य करते रहे, अपने परिवार में रहे, युद्ध किए, लेकिन पुत्र के लिए यज्ञ नहीं किया। और अब उनके हृदय में ये कामना हुई कि मुझे पुत्र के लिए यज्ञ करना है। और फिर जैसे सुमंत्र ने उनको बताया कि हाँ ये इतिहास तो मैं सुन चुका हूँ, सनत कुमार इत्यादि ने इसका वर्णन किया है, पुराणों में इसका वर्णन है कि आप एक यज्ञ करेंगे। और फिर ऋषि श्रृंग का वर्णन आया जिसका विस्तार से पिछली बार हम वर्णन कर चुके हैं। तो अब दशरथ महाराज से सुमंत्र ने कहा कि महाराज ये भी वर्णन हो चुका है, ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि आप ऋषि श्रृंग के पास जाएंगे और उनको बुला कर लाएंगे, फिर यज्ञ होगा और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो फिर दशरथ महाराज ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं, याचना करते हैं कि आप आइए और यज्ञ कीजिए। तो फिर ऋषि श्रृंग आते हैं और बहुत स्वागत उनका किया जाता है अयोध्या में, और बहुत विशाल यज्ञ की शुरुआत होती है। घोड़े को छोड़ दिया जाता है, अश्व को, और वो 1 वर्ष तक सारी पृथ्वी पर भ्रमण करता है और फिर वापस आ जाता है, और उस समय फिर यज्ञ प्रारंभ होता है 1 वर्ष के बाद। और यज्ञ की क्या तैयारियां की गई थी, बड़ी विशाल तैयारियां थी। कई राजाओं को बुलाया गया और हर राजा के रहने के लिए एक महल बनाया गया, हर एक राजा के लिए एक महल जिसमें दास दासियां सारी सुविधा। और फिर ब्राह्मणों के रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए गए, साधारण लोगों के रहने के लिए बड़ी सुविधा की गई, भोजन की बड़ी सुविधा थी। विशेष वर्णन है वाल्मीकि मुनि के रामायण में भोजन का कि बहुत प्रचुर मात्रा में अन्न बनाया गया, जैसे कहा गया कि भंडार खोल दिए दशरथ महाराज ने। और वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि जो भी उस प्रसाद को या भोजन को ग्रहण करता वो बड़ा संतुष्ट होकर जाता, राजा को बड़ा आशीर्वाद देकर जाता कि बहुत बढ़िया बना है। ब्राह्मणों को तो वैसे भी भोजन प्रिय होता है, इसलिए ब्राह्मणों को क्या चाहिए, अच्छा भोजन खिला दो, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो दशरथ महाराज ने खिलाया, तो ऐसे बड़ी प्रचुर और सरयू नदी के तट पर बहुत विशाल स्थान पर ये यज्ञशाला बनी और फिर यज्ञ आरंभ हुआ। अब यज्ञ हो रहा था भगवान श्री राम को प्रकट करने के लिए, और उस समय जब घोड़ा वापस आया तो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, फिर दक्षिणा देने का समय आया। तो उस समय दशरथ महाराज ने यज्ञ के नियम के अनुसार, जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें चार प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जो यज्ञ कराते हैं, तो दशरथ महाराज ने उन चारों को अपना पूरा राज्य दे दिया। एक ब्राह्मण को उत्तर दिशा का पूरा राज्य, एक को दक्षिण, एक को उत्तर और एक को पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं दे दी, अर्थात पूरा राज्य दे दिया दशरथ महाराज ने। सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगा, राज्य नहीं रहेगा, तो अपना सारा राज्य दान दे दिया। देखिए देने की कला, देने में जो आनंद है वो संग्रह करने में नहीं है। हमारे जीवन की पूर्णता या हमारे जीवन में हमने क्या प्राप्त किया, हमारे जीवन का क्या मूल्य है, ये इस बात से प्रमाणित नहीं होता कि हमने कितना संग्रह किया, लेकिन ये इस बात से प्रमाणित होता है कि हमने कितना दिया। और आध्यात्मिक जीवन भी यही है, हमें देना सीखना चाहिए। और इस प्रसंग में विशेष करके हम ये बात देखते हैं। तो राजा ने दे दिया। अब देखिए ब्राह्मण कैसे थे, एक एक ब्राह्मण को, चार ब्राह्मणों को चार भाग मिल गए थे पूरे राज्य के, अलग अलग एक एक भाग। लेकिन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमें राज्य करना नहीं आता, तो फिर हम ये भूमि लेकर क्या करेंगे, इसको आप ही रख लीजिए वापस। तो उन्होंने ब्राह्मणों को दिया और ब्राह्मणों ने उन्हें वापस दे दिया उनका राज्य, कि हम लोग तो भूपाल नहीं हैं, हम लोग तो राजा नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए आप ही रख लीजिए इसको। हाँ, इसके बदले में हमें थोड़ा बहुत इसका धन दे दीजिए, ताकि दक्षिणा ना मिले आपको। दक्षिणा तो ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो वापस दे रहे हैं, तो कुछ तो उसका मूल्य दे दीजिए। तो फिर राजा ने, दशरथ महाराज ने उस समय 10 लाख गायें और करीब 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और उससे 4 गुना अधिक चांदी की मुद्राएं दान में दी उन ब्राह्मणों को। ठीक है, आपने भूमि नहीं ली तो ये सब ले जाइए। तो इतना दान मिला ब्राह्मणों को। और फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने वशिष्ठ मुनि और ऋषि श्रृंगी उन सबको, उन दोनों को ये दे दिया कि ये मुद्राएं सोने की आप रखिए, ये चांदी की मुद्राएं आप रखिए, गाय आप रखिए। देखिए कितना अच्छा भाव। हम लोगों को अगर सोने की मुद्राएं मिल जाती, ऐसे राजन दे देते कि यज्ञ कराया है, ये लो 1 करोड़ सोने की मुद्राएं, तो हम लोग एक भी गिरने नहीं देते उसको, कहीं ऐसे ऐसे इधर ना चली जाए। दे दिया ब्राह्मणों ने। और फिर वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि और ऋषि श्रृंगी ने जितने भी वहां पर ब्राह्मण उपस्थित थे उन सब में बराबर बांट दिया, उन्होंने भी नहीं रखा अपने पास। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है ये। सुनने में तो बड़ी साधारण बात लग रही है, इसने उसको दिया, उसने उसको दे दिया, उसने वापस कर दिया, लेकिन भाव कितना महत्वपूर्ण है। कोई रखना नहीं चाहते, उन्होंने दे दिया। और दशरथ महाराज ने केवल सोने की मुद्रा इत्यादि नहीं, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते कि सब कुछ दे दिया अपने खजाने से, कुछ नहीं रहा उनके पास, सब बांट दिया। और अंत में एक ब्राह्मण आया जिसको कुछ मिला नहीं था, उसने प्रणाम किया महाराज को और कुछ याचना की, अब कुछ था ही नहीं, सारा खजाना खाली कर चुके थे दशरथ महाराज, तो अपने हाथ में जो उनकी अंगूठी इत्यादि थी वो सब भी निकाल कर दे दिया, ले जा। देखिए देने का भाव। इसीलिए हमें जीवन में देना सीखना चाहिए। जितना हम लोग केवल लेते रहेंगे हमारा हृदय पत्थर हो जाएगा, इसीलिए देना सीखना चाहिए। और देने की कला क्या है, सबसे अच्छा देने की कला हमें सीखनी चाहिए कि सबसे अच्छा वो दान है जहां हम कोई आशा नहीं करें। जब दिया जाता है तो हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके बदले में कुछ मिलेगा, वो सही दान है। जब कोई चीज दी जाती है तो दो प्रकार के लोगों को लाभ होता है, एक जो देता है, दूसरा जो लेता है। अब देने वाले को क्या लाभ होता है, उसको आनंद आता है जब वो हृदय से देता है, बिना किसी आशा के देता है तो उसको आनंद आता है, और जो लेता है उसको भी आनंद आता है। तो सच्चा दृष्टि में दान या देना क्या है, जब हम बिना किसी आशा के दें तब प्रेम उत्पन्न होता है, नहीं तो प्रेम उत्पन्न नहीं होता, नहीं तो केवल एक व्यापार हो जाता है। चीन देश में एक कहावत है जिसमें कहते हैं, अलग अलग चीजें बताई हैं, तो वो इंग्लिश में उसको ऐसे कहते हैं कि काइंडनेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के, जब हम शब्दों के प्रति उदार होते हैं तो काइंडनेस ऑफ वर्ड्स ब्रिंग्स क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, काइंडनेस ऑफ थॉट्स क्रिएट्स प्रोफाउंडनेस, एंड काइंडनेस इन गिविंग क्रिएट्स लव। कहा जाता है कि जब हम शब्दों के प्रति बड़े उदार होते हैं, मतलब हृदय से शब्दों को कहते हैं, तो फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति का विश्वास बढ़ जाता है। जब हम विचारों के प्रति उदार होते हैं, हमारे मन की स्थिति बड़ी उदार होती है, तो फिर गंभीरता बढ़ती है। और जब हम देने के प्रति उदार होते हैं, अर्थात कंजूसी नहीं करते, हृदय से देते हैं, तो फिर प्रेम बढ़ता है, प्रेम प्रकट होता है। तो इसलिए देने की कला को सीखना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें केवल देना सीखना चाहिए, केवल लेना नहीं। जीवन का मूल्य तभी होगा जितना हम देंगे। एक बार एक तपस्वी हिमालय में तपस्या कर रहे थे, कई साल हो गए तपस्या करते करते, उन्हें लगने लगा कि मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरी तपस्या में कोई कमी है, पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो सोचा कि ठीक है, गांव चला जाता हूं वापस, और वहां जाकर कुछ कार्य करता हूं। तो वापस आने लगे तो एक व्यक्ति को देखा जो बड़ी गंभीरता से अपने कार्य में लगा था। तो उन्होंने सोचा कि एक साधारण व्यक्ति इतनी गंभीरता से कार्य करता है, मुझे भी करना चाहिए, फिर से चले गए। फिर कई वर्ष हो गए, फिर उनको पूर्णता नहीं हुई, वापस आने लगे तो एक चूहे को देखा, चूहा बड़ी तीव्रता से अपना घर बना रहा है, खोदे जा रहा है। तो उस योगी ने सोचा कि अरे, चूहा अगर इतनी मेहनत से कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए, फिर से चले गए। लेकिन फिर भी वही चीज की मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही है। तो फिर वे गांव वापस आ गए। तो जब अपने गांव में आए तो शाम का समय था, गांव वाले सब अपने अपने घर में थे अंदर। तो बाहर उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बड़ा तड़प रहा था, उसे प्यास लगी थी, पानी के लिए तड़प रहा था, गिरा हुआ था, अवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन कहीं आसपास पानी नहीं था। तो अचानक इनके हृदय में एक भाव आया कि इसको पानी लाकर दे देना चाहिए। तो थोड़ा सा उन्होंने पात्र लिया, जल्दी से गए, लाकर पानी दिया कुत्ते को, और कुत्ते ने बहुत जल्दी जल्दी पी लिया, बहुत प्यासा था, और सारा पानी खत्म हो गया। फिर से गए और फिर से लेकर आए, फिर से उस कुत्ते ने जल्दी से पी लिया, और फिर अचानक उन्होंने देखा कि वो कुत्ता वहां से गायब हुआ। और फिर उनको समझ में आया कि ये तो कुछ एक चमत्कार हुआ। तो उस समय उस कुत्ते की जगह पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ है। तो इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं इतने वर्ष तक हिमालय में तपस्या कर रहा था और ये कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि अब तुमने देने की कला को सीखा। आज तक तुम केवल अपनी चिंता कर रहे थे कि कैसे मेरी प्रगति हो, कैसे मेरा मन संतुष्ट हो, कैसे मैं प्रगति आध्यात्मिक जीवन में करूं, आज तक यही सोच रहे थे। तुमने दूसरों के लिए कभी कुछ किया नहीं, लेकिन आज तुमने कुछ किया, देने की भावना आई, इसलिए अब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ है। तो ये आध्यात्मिक जीवन है, जहां हम स्वार्थी नहीं बनते, निस्वार्थी बनते हैं। निस्वार्थी मतलब देना। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने इसका बड़े मधुर तरीके से वर्णन किया। वो वर्णन करते हैं शरद ऋतु का और कहते हैं कि शरद ऋतु के पहले वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु में बादल काले काले होते हैं, घने बादल। क्यों काले होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत सा पानी भर रखा होता है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में ये बादल सारे जल को दे चुके होते हैं और इसीलिए शरद ऋतु के जो बादल होते हैं वे बड़े स्वच्छ होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम अपने पास रखे रहते हैं, देते नहीं हैं, तब तक हम काले काले बादल की तरह हैं। लेकिन जब दे देते हैं तो हृदय स्वच्छ हो जाता है। तो इसीलिए ये देना, देने से प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि जब दशरथ महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया तो दंडवत प्रणाम किया, ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया और बहुत हर्षित हो गए देने से। तो देने का आनंद लेने के आनंद से कहीं ज्यादा है। चैतन्य चरितामृत में भी एक वर्णन आता है दही चीड़ा उत्सव का। जब दही चीड़ा उत्सव हुआ उसके पहले रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने गए पानी हट्टी में। नित्यानंद प्रभु दूर बैठे थे, दूर से ही प्रणाम किया। तो भक्तों ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि रघुनाथ आया है, दूर से प्रणाम कर रहा है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु कहते हैं चोर है ये, दूर से प्रणाम करता है तो आज इसको दंड मिलेगा। आया आया आज ही तुम्हें करीमु दंडन, आज तो इसको दंड दूंगा। और क्या दंड दिया उन्होंने? दधि चीड़ भक्षण कर मोर गणे शुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। तो उन्होंने दंड दिया, इसको दंड मिलेगा। क्या दंड है? जितने भी मेरे यहाँ पर भक्तगण हैं उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। दधि चीड़ा भक्षण कर मोर गणे शुनी आनंदित हैल। सुनकर बहुत आनंद हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी को, जबकि वो दे रहे थे, देना था उनको। और वो भी नित्यानंद प्रभु के जो भक्तगण थे वो बहुत कम नहीं थे, दो चार नहीं थे। आगे वर्णन किया है इस उत्सव का कि पता नहीं कितने लोग थे। जब जमीन पर स्थान नहीं रहा तो फिर वे लोग नदी में पानी में खड़े होकर खाने लगे, घुटनों तक पानी में खड़े होकर खा रहे थे। इतने लोग थे, कौन कौन खा रहा था कोई पता नहीं था। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे। तो ये भाव है और यही भाव दशरथ महाराज का था। बड़े प्रसन्न, अपना सब कुछ दे दिया, राज्य दे दिया, धन दे दिया, खजाना खोल दिया, अपने हाथ की अंगूठियों को भी उतार के दे दिया, लेकिन बड़े प्रसन्न। तो इसीलिए हमें ये कला सीखनी चाहिए। तो खैर यज्ञ हुआ अश्वमेध यज्ञ और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ पुत्र की प्राप्ति के लिए। और फिर उस यज्ञ में सारे देवता आए अपने अपने हिस्से को लेने के लिए। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है जहां अग्नि के द्वारा देवताओं के हिस्से को दिया जाता है, अग्नि लेती है और फिर आगे दे देती है। लेकिन एक यज्ञ जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है जिसमें स्वयं देवता आते हैं अपने अपने हिस्से को लेने के लिए, अपनी अपनी आहुतियों को लेने के लिए। तो देवता आए और आपस में बात करने लगे और ये वो समय था जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपके वरदान के कारण रावण इतना शक्तिशाली हो गया और हमें भी अब मानना पड़ता है क्योंकि आपने दिया है वरदान तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा उपाय तो है, जब मैंने वरदान दिया था तो उसने मनुष्यों और वानरों के लिए नहीं मांगा था क्योंकि उनको तो वो कीड़े मकोड़े समझता है। वैसे थे भी रावण जैसे राक्षस के लिए साधारण मनुष्य क्या थे, कुंभकर्ण तो ऐसे ही खा जाया करता था, दो चार देवताओं को, तो फिर मनुष्य की क्या कहना। और उस समय भगवान भी वहां प्रकट हुए, स्वयं विष्णु गरुड़ पे सवार होकर। तो सबने प्रार्थना की भगवान से, आप ही रक्षा कीजिए, ये रावण बहुत कष्ट दे रहा है। तो फिर भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो, बहुत जल्द मैं दशरथ महाराज के यहाँ चार रूपों में प्रकट होऊंगा। दशरथ महाराज और कौशल्या देवी ने बहुत कड़ी तपस्या की थी पूर्व जन्मों में, और भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो अब वो समय आया था, तो फिर यज्ञ पूरा हो रहा था और सारे जो देवता थे वो भी वहां इंतजार कर रहे थे। और फिर ऐसे समय में यज्ञ की अग्नि से एक बड़ा विशाल पुरुष प्रकट हुआ, बहुत भयंकर, बड़ा विशाल, काला रंग, तेज बहुत था, रंग काला था, लाल रंग के वस्त्र पहने हुआ था। और फिर उसने, उसके हाथ में खीर थी, और उसने दशरथ महाराज से कहा कि मुझे आप एक दिव्य लोक से आए हुए व्यक्ति को जानिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो प्रजापति लोक से आया हूं, और मैं ये विशेष खीर जो देवताओं ने बनाई है वो आपके लिए लाया हूं। आप बड़े भाग्यवान हैं, ऐसी खीर मनुष्यों के भाग्य में नहीं होती है, तो मैं आपके लिए लाया हूं, इसको स्वीकार कीजिए, अपनी रानियों को दे दीजिए और फिर चार पुत्र आपको उत्पन्न होंगे। तो दशरथ महाराज ने जब स्वीकार किया जैसे ही उस खीर को, तो उन्होंने तुरंत धन्यवाद दिया इस पुरुष को और उसकी प्रदक्षिणा की। वैसे अलग अलग वर्णन पुराणों में किया है, एक स्थान पर वर्णन है कि स्वयं अग्निदेव आए थे जिन्होंने ये खीर का कटोरा दिया, एक स्थान पर यह भी वर्णन है कि स्वयं भगवान विष्णु आए थे देने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि ये प्रजापति लोक का व्यक्ति आया और इसने दिया। तो ऐसे वो देकर फिर अंतर्धान हो गया और दशरथ महाराज के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, उसकी प्रदक्षिणा करके, उसको प्रणाम करके। देखिए दशरथ महाराज के लिए कितना आनंद का वो समय होगा कि अब उसको, उनको लाकर वो खीर दे रहे हैं, तो तुरंत लेकर भागे नहीं कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, प्रदक्षिणा की और तब। तो दशरथ महाराज सिखलाते हैं कि किसी भी अवस्था में हमें अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए, हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जी, भक्ति में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सार है भक्ति का। एक है कृतज्ञता, दूसरी है समर्पण और तीसरा है आचरण। इन तीनों के बिना हमारी भक्ति की गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे एक कार होती है, गाड़ी होती है, उसमें ईंधन डालना होता है, उसमें इंजन की आवश्यकता होती है और पहियों की आवश्यकता। मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसमें ईंधन है लेकिन इंजन ही नहीं है, तो वो चलेगी नहीं। हाँ, इंजन है ईंधन नहीं है तो भी नहीं चलेगी। अब ईंधन है और इंजन भी है लेकिन पहिए ही नहीं है गाड़ी के, तो भी नहीं चलेगी। हाँ, आप धक्का मार सकते हो ऐसे, उसको आवाज आएगी थोड़ा बहुत, लेकिन चलेगी नहीं। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये हमारी भक्ति की गाड़ी में जो ईंधन है वो है कृतज्ञता। जब हमारे अंदर कृतज्ञता होती है तो ये ईंधन के समान है। हम गाड़ी में ईंधन डालते हैं और वो ईंधन गाड़ी का जो इंजन होता है उसको शुरू कर देता है, उसको प्रारंभ करता है। तो जो इंजन है वो समर्पण है, कृतज्ञता से समर्पण आता है। और जब वो समर्पण हो तो वो जो भाव है वो आचरण में आता है। जैसा भाव भक्त का है वो उसके आचरण में भी आएगा। तो ये तीन चीजें बड़ी आवश्यक हैं। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में गए तो कई भक्तों ने उनको समर्पण किया। क्या था, कृतज्ञता, वे शिल प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ थे, कृतज्ञता का भाव था क्योंकि शिल प्रभुपाद ने उनको करुणा और प्रेम प्रदान किया। वे नहीं जानते थे श्री कृष्ण को, वे नहीं जानते थे श्रीमती राधा रानी को, वे नहीं जानते थे भक्ति के मार्ग को, लेकिन शिल प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता थी कि ये एक व्यक्ति हमें कुछ देने आया है, सर्वोच्च चीज प्रदान करने आया है, हम जानते नहीं हैं वो क्या है, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति करुणावश प्रेमवश हमें कुछ देने आया है, इसीलिए कृतज्ञ थे उसके उनके प्रति। और उस कृतज्ञता से समर्पण आया। कैसा समर्पण? कुछ भी करने को तैयार शिल प्रभुपाद के लिए, कुछ भी जीवन में करने के लिए तैयार, ऐसा समर्पण उन्होंने किया। अभी हम एक दो दिन पहले सुन रहे थे कि शिल प्रभुपाद ने जब बंबई में मंदिर बनाने की जुहू में इच्छा जाहिर की तो उनके शिष्य उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये वो समय था जब बंबई में वो जो आज जुहू में मंदिर है वो जंगल था, कोई नहीं जाता था वहां पर। और जब शिल प्रभुपाद को ये जमीन देने के लिए कहा गया, मिस्टर एन ने कहा कि आपको देंगे, तो शिल प्रभुपाद उस जमीन पर गए और जब जमीन को देखा तो शिल प्रभुपाद को स्मरण हुआ कि अमेरिका जाने से पहले जब सुमति मुरारजी के घर जुहू में, जो उनका घर था, शिल प्रभुपाद जाया करते थे उनको भागवतम सिखाने के लिए, और उस जमीन के पास से शिल प्रभुपाद गुजरा करते थे और देखकर सोचते थे कि यहाँ एक अच्छा मंदिर होना चाहिए। फिर कई वर्ष बीत गए, प्रभुपाद को ध्यान नहीं रहा और अब फिर से वही जमीन शिल प्रभुपाद के पास आई, लोग लेकर आए कि ये जमीन आप खरीद लीजिए। तो शिल प्रभुपाद ने कहा ये भगवान का संदेश है, श्री कृष्ण मुझे याद दिला रहे हैं कि यहाँ मंदिर होना ही चाहिए। तो जब भक्तों को लेकर आए तो भक्त सोच रहे थे हमें मंदिर मलाबार हिल में बनाना चाहिए, बंबई का बहुत ऐश्वर्यशाली स्थान है मलाबार हिल, जितने बड़े बड़े नेता हैं सब वहीं रहते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं, और उस समय इस्कॉन के आजीवन सदस्य भी वहीं रहा करते थे। तो सब भक्त सोच रहे थे मंदिर हम वहाँ बनाएंगे, और प्रभुपाद ने कहा ये जंगल में बनाना है। तो जब पहली बार प्रभुपाद के शिष्य उस स्थान पर आए तो एक दूसरे की ओर देख रहे थे, यहाँ मंदिर, ये जंगल है, कौन आएगा यहाँ, और वो भी प्रभुपाद कोई छोटा मंदिर नहीं, एक 5-स्टार होटल की तरफ बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे। तो वो लोग सोच रहे थे, और इतना ही नहीं विरोध भी किया उन्होंने। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद हम लोग पाश्चात्य देश के लोग हैं, हमें जंगल में रहने की आदत नहीं है, हमें नल में बहता हुआ पानी चाहिए, हमें दरवाजे चाहिए, अर्थात ये जंगल में हम नहीं रह सकते। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने उनसे कहा, क्या तुम शुद्ध नहीं होना चाहते? ये सुनकर तमाल कृष्ण महाराज शांत हो गए। और जब सब भक्तों ने सुना कि तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने कहा है कि शुद्ध नहीं होना चाहते, तो फिर सब जाने के लिए तैयार हो गए। ये समर्पण था, कोई उनको अनुभव नहीं था ऐसे स्थान में रहने का, इच्छा नहीं थी। वो सोच रहे थे इतना अच्छा आकाश गंगा नाम के इमारत में रहते थे, बड़ा बढ़िया वहां पर सब व्यवस्था थी, उसको छोड़कर जंगल में जाकर रहना जहां सांप कीड़े मकौड़े। कृतज्ञता थी प्रभुपाद के प्रति, इसीलिए समर्पण किया और वो रहे वहां जाकर। और आज देखिए, आज भक्तों ने जो नया वहां पर विकल्प बनाया है उसको नाम दिया है इस पृथ्वी का स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ। तो जंगल से स्वर्ग प्रकट हो गया, ये प्रभुपाद की इच्छा के कारण हुआ, और ये उसलिए हुआ क्योंकि उनके भक्तों ने समर्पण किया, कृतज्ञता प्रकट करते हुए समर्पण किया। तो इसलिए भक्ति में ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, हमारी कृतज्ञता, हमारा समर्पण और हमारा आचरण। अगर हमने इंजन शुरू भी कर दिया तो टायर चाहिए, और ये जो टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं गाड़ी के, ये दो काम करते हैं, एक दिशा और एक गति। कितनी गति से चलना है, तेज चलते हैं और घूम जाते हैं दिशा में, तो हमारा आचरण, हमारी गति और हमारी दिशा दोनों को प्रकट कराता है। हमारे आचरण से हमारी दिशा बनती है, हम किस दिशा में जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दशरथ महाराज ने अपने उदाहरण से दिखलाया कि हर अवस्था में, सुख में दुख में, आचरण नहीं त्यागा। राजा थे, आचरण नहीं त्यागा। और फिर दशरथ महाराज उस खीर को लेकर रानियों के पास गए। वैसे तो दशरथ महाराज की कई रानियां थी, तीन प्रमुख थी उनमें, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कैकई सबसे छोटी थी लेकिन बड़ी प्रिय थी दशरथ महाराज को। तो अब इस खीर का कैसे बंटवारा किया, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन है। पद्म पुराण में अलग वर्णन है, अध्यात्म रामायण अलग वर्णन देता है, वाल्मीकि मुनि ने अलग वर्णन दिया है। तो एक वर्णन है कि उन्होंने एक खीर, जो खीर थे उसके पहले दो भाग किए, एक जो भाग था वो कौशल्या को दे दिया, फिर जो आधा बचा था उसके और दो भाग किए, फिर वो एक भाग उन्होंने कैकई को दिया, और जो एक बचा था उसके और दो भाग करके उन्होंने कौशल्या और कैकई को देना चाहा, लेकिन उन्होंने सुमित्रा को दे दिया, ऐसा वर्णन है। दूसरा वर्णन ये भी है कि आधा आधा किया और कैकई को दे दिया और कौशल्या को दे दिया, सुमित्रा के लिए बचा ही नहीं। तो फिर कौशल्या और कैकई ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा सुमित्रा को दे दिया। कहते हैं कि इसीलिए जो कौशल्या के हिस्से का आधा था वो लक्ष्मण बने, इसीलिए वो राम के साथ रहे, और जो कैकई के हिस्से का आधा था वो शत्रुघ्न बने और हमेशा भरत के साथ रहे। तो खैर ऐसे अलग अलग वर्णन है कि किस प्रकार इस खीर को बांटा गया अलग अलग भागों में, और फिर अपनी रानियों को उन्होंने दे दिया। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सुमित्रा के आचरण से सीखते हैं। सुमित्रा ये बीच की थी, पहले कौशल्या से विवाह हुआ था, फिर सुमित्रा से। आपको याद होगा हमने वर्णन किया था जब दशरथ महाराज का वर्णन कर रहे थे कि मगध देश से सुमित्रा आई थी, तो पहले कौशल्या फिर सुमित्रा और अंत में कैकई से हुआ था। तो कैकई तो छोटी थी लेकिन खीर का हिस्सा पहले उसको मिला, क्या कारण था? एक कारण हम कह सकते हैं कि दशरथ महाराज को बड़ा प्रेम था कैकई से, लेकिन इससे भी प्रमुख एक कारण था और वो थी सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी ने जानबूझकर अंत में खीर को ग्रहण किया, और क्यों किया? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे जो पुत्र हों वो इन दोनों की सेवा करें, सेवा भाव। देखिए सुमित्रा देवी के चरित्र का अगर वर्णन करें तो उनका गुणगान करना संभव नहीं। सारी रामायण में बहुत कम स्थानों में सुमित्रा देवी का वर्णन हुआ है, कभी जैसे यहाँ पर खीर के समय, या फिर जब लक्ष्मण जाने लगे बस तब, और एक दो स्थानों पर बस। लेकिन सुमित्रा देवी का चरित्र इतना महान है, इतनी श्रेष्ठ है वो, कि अभी तो जन्म नहीं हुआ था दोनों पुत्रों का, लेकिन अभी से उन्होंने सोच लिया कि मेरे दो पुत्र इन दोनों की सेवा करेंगे, इसीलिए मैं अंत में स्वीकार करूंगी, पहले दो आने चाहिए बड़े, फिर उनकी सेवा के लिए मेरे दो पुत्र। कितना सुंदर भाव है, पहले से ही तैयारी। तो इस प्रसंग में एक बात ये सीखते हैं कि सुमित्रा देवी चाहती थी कि उनके दोनों पुत्र सेवा करें, और ये प्रसंग हम आगे चलकर बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे जब लक्ष्मण सुमित्रा देवी के पास जाते हैं आज्ञा मांगने वन में जाने के लिए जब वनवास हुआ था भगवान श्री राम को, तो उस समय सुमित्रा देवी ने क्या कहा था। तो अब सुमित्रा देवी ने तैयारी शुरू की। मां के जो संस्कार होते हैं वो पुत्र में आते हैं, यहां हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि सुमित्रा देवी चाहती थी कि मेरे पुत्र, उनका भाव था सेवा का, तो दोनों पुत्रों ने सेवा की। और कैसी सेवा, लक्ष्मण ने अपना जीवन दे दिया पूर्ण रूप से केवल सेवा के लिए, शत्रुघ्न ने दे दिया, भरत के साथ रहे। तो जो माँ के संस्कार होते हैं, माँ के संस्कार पुत्र में आते हैं, संतान में आते हैं। इसलिए माँ बनना या ऐसी स्थिति को, ऐसे पद को स्वीकार करना, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हम किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी का भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हम कई बार ये बात बतला चुके, अभी थोड़े दिन पहले भी एक भक्त को आए थे, हम उनको बता रहे थे कि देखिए, बच्चे को अपना नाम रखने का भी अधिकार नहीं होता है। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप सोचकर नाम रख देते हैं, हाँ वो थोड़ा विचार करते हैं लेकिन नाम वो रख देते हैं। बच्चे को स्वीकार करना पड़ता है, विरोध नहीं करता बड़ा होके कि आपको किसने अधिकार दिया मेरा नाम रखने का, स्वीकार करना पड़ता है। जैसा हम उसको संस्कार देते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। हाँ कभी कभी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के कारण अच्छे संस्कार होने पर भी बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है, विशेषतः माता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे। और ये संस्कार ही हैं जो जीवन में काम आते हैं, बाकी कोई चीज काम नहीं आती है। आप बहुत धन दे सकते हैं, अन्य कोई चीज दे सकते हैं, सोचते हैं हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, नहीं। कर्तव्य तब पूरा होता है जब संस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ इस प्रसंग में सुमित्रा देवी ये समझा रही हैं कि कैसे माँ को होना चाहिए। अभी तो संतान हुई ही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी से तैयारी कि कैसे मेरे पुत्र होंगे, तो इसलिए संस्कार देने चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग से हम सीखते हैं कि सेवा भाव से ही सेवा भाव उत्पन्न होता है। यहाँ सुमित्रा देवी का भाव सेवा का है, और आगे चलकर हम देखते हैं कि शत्रुघ्न लक्ष्मण दोनों ने उस सेवा को स्वीकार किया, कोई विरोध नहीं। लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ वन में चले गए सेवा के लिए, सदैव तत्पर रहते सेवा के लिए। राम सोते और लक्ष्मण खड़े रहते, जागते रहते सेवा के लिए। तो सेवा भाव, क्योंकि मां का वो भाव था इसीलिए पुत्र को वो भाव उत्पन्न हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की कि वो कैसे अपनी संतान को, संतान के जीवन को ढालें, कैसे उसका भविष्य बनाएं, कैसे संस्कार उसको प्रदान करें, ताकि आगे चलकर वो बालक अपने माता पिता पर गर्व कर सके। ऐसे संस्कार हमें प्रदान करने चाहिए, ऐसे संस्कार नहीं जहां बड़ा होकर बालक अपने माता पिता को तुच्छ माने, हीन माने, ऐसा माने कि उन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। हमें ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बालक को गर्व होना चाहिए कि भगवान की कृपा से मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने ऐसे संस्कार मुझे दिए जिसके कारण आज मैं अपने जीवन में भगवान की भक्ति कर पा रहा। बालकों को संस्कार देना ये माता पिता का कर्तव्य है। भक्त बनना या ना बनना ये बालक के कर्म के अनुसार है, लेकिन फिर भी वातावरण प्रदान करना चाहिए। भागवत में लिखा है, गुरु न सस्याद जननी न सस्याद। व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने आश्रितों को मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त नहीं कर सकता अर्थात कम से कम उन्हें मार्ग दिखलाना चाहिए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहिए। फिर मुक्ति मिले या ना मिले ये तो आगे की बात है, लेकिन कम से कम प्रयास करना चाहिए, एक वातावरण देना चाहिए, यह बड़ा कर्तव्य है माता पिता का। तो सुमित्रा देवी यहां पर इस चीज को समझा रही हैं। तो अब तीनों ने इसको ग्रहण किया और फिर तीनों गर्भवती हुई, और ऐसा वर्णन वाल्मीकि मुनि भी करते हैं और अन्य रामायण के संस्करणों में भी किया गया है कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए, प्रकट अर्थात गर्भ में आए, उस समय से उनकी शोभा बहुत बढ़ गई। जादिनते हरि गर्भ ही आए, जैसे ही भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक है कि कांति बढ़ जाती है। देवकी के बारे में भी ऐसा ही वर्णन किया गया कि जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो देवकी का आनंद कई गुना बढ़ गया, उसके चेहरे की कांति कई गुना बढ़ गई। तो यहां पर भी तीनों जो माताएं थीं उनकी कांति बहुत बढ़ गई, ऐसा वर्णन किया गया। मंदिर महासब राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी, जो रह रही थी उनको, उनके भगवान उनके हृदय में, उनके गर्भ में आने के कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गई, तेज बहुत बढ़ गया। और इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, सब देवताओं को बुलाया और कहा कि अपने अपने अंशों को प्रकट करो, वानरों के रूप में, भालुओं के रूप में, रीछों के रूप में, सब प्रकट हो जाओ, इस पृथ्वी को भर दो पूरा, ताकि जब श्री रामचंद्र जी आए तब आप सब उनका सहयोग कर सको। तो फिर कई देवताओं ने अलग अलग अप्सराओं के द्वारा अलग अलग अपने पुत्रों को प्रकट किया, अपने अंशों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहते समय एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम सब वानरों के रूप में जल्दी जल्दी प्रकट हो जाओ, और जांबवंत को तो मैंने पहले ही प्रकट करा दिया है। ये विशेष वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी जांबवंत का, बाकी सबको कहा कि अब अपने अपने प्रकट हो, और जांबवंत को तो मैंने पहले ही प्रकट करा दिया। जांबवंत ये सृष्टि के पहले जीव हैं ब्रह्मा जी के बाद, जो ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति हुई है। इनका भी इतिहास बड़ा रोचक है, कैसे प्रकट हुए। एक समय भगवान विष्णु सो रहे थे और उनकी इच्छा हुई थोड़े वीर रस का आस्वादन लेने की, थोड़े युद्ध करने की, सोते सोते थोड़ा थक गए थे, अब सोचा कि युद्ध करना चाहिए। तो फिर उनके कान से दो बूंद पसीने की टपकी और वो दोनों असुर हो गए, मधु और कैतब। तो जो दोनों मधु और कैतब उत्पन्न हुए, अब थे तो असुर राक्षस, जैसे ही उन्होंने विष्णु को देखा तो उन्होंने कहा इसको मारना चाहिए। जो असुर होते हैं वो भगवान के दर्शन ऐसे ही करते हैं, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। दुर्योधन ने जब भगवान को देखा, विश्वरूप को देखा, मार दो इसको, पकड़ लो इसको, मायावी है ये। तो मधु और कैतब ने भी कहा कि ठीक है मार देना चाहिए। तो भगवान उस समय उठे, भगवान ने दोनों को देखा, भगवान ने जाकर हाथ जोड़कर कहा कि एक वरदान चाहता हूं आपसे। तो दोनों सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, पूछो क्या चाहिए। भगवान ने कहा युद्ध करना चाहता हूं आपसे। तो दोनों खुश हो गए, यही तो हम भी चाहते थे, अभी मारेंगे इसको ठीक से। तो भगवान से उन्होंने कहा कि हाँ युद्ध तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप हमें जब मारोगे तो पृथ्वी पे नहीं मारना, आकाश में नहीं मारना, जल में नहीं मारना, वायु में नहीं मारना, अग्नि में नहीं मारना, किसी भी भौतिक तत्व में, आठ तत्व होते हैं उसमें नहीं मारना। हम सब जानते हैं ना भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भूमिरा पुनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम् मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो भौतिक प्रकृति है ये आठ तत्वों से बनी है, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। तो उन्होंने कहा इस जगह पे नहीं मारना, बाकी कहीं भी मार देना, कितना बुद्धि लगाया ना, क्योंकि इस जगत में कहीं ना कहीं तो आकाश होगा, कहीं जल होगा, कहीं अग्नि होगी, भौतिक तत्व तो होंगे ही, अहंकार होगा। तो विष्णु ने, ठीक है युद्ध करेंगे, नहीं मारूंगा तुम्हें इन 8 चीजों के अलावा मारूंगा। तो बड़े समय युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी को पसीने आने लगे। दरअसल उस समय ब्रह्मा जी केवल अकेले ही थे, अब वो तपस्या कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करना है, सृष्टि कैसे करनी है, अभी तक प्रारंभ नहीं किया था। तो उन्होंने देखा कि युद्ध हो रहा है, भगवान युद्ध कर रहे, और जब भगवान युद्ध करेंगे, अब आनंद लेने के लिए कर रहे थे, लेकिन मधु और कैटभ बड़े पराक्रमी असुर थे। तो ब्रह्मा जी को पसीना आ गया कि ये क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी को जब पसीना आया तो उसमें से एक छोटा सा जीव निकल गया और अचानक बहुत बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या हुआ, तो वो थे जांबवंत, पहले जीव। और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, आपने मेरी उत्पत्ति की है, बताइए मैं कहां जाऊं। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था इसकी उत्पत्ति हुई क्यों है, वो भी नहीं पता था ब्रह्मा जी को। तो क्या कहते कहां जाऊं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, जांबुद्वीप में चले जाओ। तो जांबुद्वीप में जाने से उनका नाम जांबवंत पड़ गया। तो वो वहां आए, अकेले थे वो भी, सृष्टि हुई नहीं थी, तो इधर उधर देख रहे थे, अचानक देखा कि भगवान लड़ रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है। तो जांबवंत दर्शक बन गए, जब भगवान मारते तो जोर जोर से तालियां बजाते, बहुत जोर, और एक और जरा इधर से मारो, थोड़ा इधर से मारो, थोड़ा इधर से मारो। तो युद्ध हो रहा हो तो कोई दर्शक भी तो चाहिए ना, थोड़ा उत्साह दिलाने के लिए। तो दर्शक देखते रहे बड़े समय तक, बहुत समय तक युद्ध चला। फिर अंत में भगवान ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मारना है। तो मधु और कैटभ को मार दिया उन्होंने। कैसे मारा, अपनी गोद में बिठाकर, क्योंकि भगवान की गोद तो दिव्य है, उसमें तो ना पृथ्वी है ना आकाश है ना कोई भौतिक तत्व है, वो तो दिव्य है, इसलिए भगवान ने बड़ी आसानी से मार दिया। उन्होंने कहा था कि 8 तत्वों में से किसी में मत मारना, उनका ठीक है अपनी गोद में रखकर मार दिया। तो ये देखकर जांबवंत बड़े खुश हुए, और उसके बाद जांबवंत तब से अब तक चिरायु है, वो चिरंजीवी। तो उन्होंने भगवान के सारे अवतार देखे, जो भी अवतार आते बड़े आनंद से ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करते, प्रदक्षिणा करते। वामन देव के लिए कहा गया, जब वामन देव आए और वामन देव ने अपना शरीर को बहुत बढ़ा लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे वो, तो जब जांबवंत ने देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई इस रूप को देखकर, और उन्होंने 6 क्षणों में 18 बार वामन देव की प्रदक्षिणा कर ली इतने तीव्र थे वो, उस समय युवा अवस्था में थे, वृद्ध नहीं थे। तो 6 क्षणों में उन्होंने 18 बार वामन देव की प्रदक्षिणा करी, वो वामन देव जिन्होंने अपना रूप बड़ा पूरे ब्रह्मांड में बढ़ा दिया था। तो उन्होंने प्रदक्षिणा की, और करके जब वो वापस आ रहे थे तो बड़े उत्साह में थे, तो आते आते मेरु पर्वत की एक चोटी को थोड़ी सी टक्कर मार दी और मेरु पर्वत टूट गया, थोड़ी सी चोटी टूट गई उसकी। तो मेरु पर्वत को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया जांबवंत को कि तुम्हें अपने शक्ति का बड़ा मान है, तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, बूढ़े व्यक्तियों में शक्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जांबवंत बूढ़े हो गए। लेकिन फिर मेरु पर्वत ने यह भी कहा कि चिंता नहीं करना, रामचंद्र जी जब आएंगे, भगवान का एक और अवतार आएगा, तुमने बहुत से अवतार देख लिए हैं, अब रामचंद्र जी आएंगे तब तुम्हें उनकी सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। तो जांबवंत तब से इंतजार कर रहे थे कि कब आए श्री रामचंद्र और मैं सहायता करूँ। और जांबवंत ने बहुत बड़ी सहायता की, आगे चलकर हनुमान जी को वो याद दिलाएंगे उनकी शक्ति, नहीं तो सब रो रहे थे बैठे, अरे कैसे सीता को लाएं, कौन जाएगा इतनी दूर, सब वानर चर्चा कर रहे थे। एक कहता मैं तो केवल 10 योजन जा सकता हूँ, मैं केवल 15, मैं 20, और ये तो 100 योजन छलांग लगानी है, कौन लगाएगा, तो कोई नहीं। और हनुमान जी तो भूल गए थे अपनी शक्ति, हनुमान जी भी सोच रहे थे अरे कौन जाएगा। तो फिर जांबवंत ने याद दिलाया था कि हनुमान तुम्हारे अंदर शक्ति है। हनुमान जी के जन्म की कथा भी कहेंगे, बहुत रोचक कथा है कि किस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ और कैसे हनुमान जी ने बाल लीलाएं की और किस कारण से उन्हें श्राप मिला। तो हनुमान जी भी अंश हैं वायु के। तो ऐसे जांबवंत हुए। हनुमान जी की चर्चा हम लोग करेंगे जब भगवान श्री राम का हनुमान जी से मिलन होगा, उस समय हनुमान जी के जन्म इत्यादि की कथा को कहेंगे, बहुत मनोरम कथा है। तो खैर यहाँ जांबवंत इस तरह रहने लगे। अपनी पुत्री का विवाह भी उन्होंने भगवान से किया था, ये भी कथा आप सब जानते हैं। तो जांबवंत रहने लगे और श्री रामचंद्र जी का इंतजार करने लगे। तो उस समय अलग अलग देवताओं ने अपने अलग अलग अंशों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इंद्र ने वाली को प्रकट किया, वाली जो थे वो इंद्र के पुत्र थे। सूर्य के पुत्र हुए सुग्रीव, सुग्रीव को प्रकट किया। वैसे सूर्य ने हनुमान जी से एक वरदान मांगा था कि तुम मेरे पुत्र की सदैव रक्षा करना। सूर्य ने हनुमान जी को ज्ञान दिया था, सूर्य बहुत ज्ञानी है। तो जब हनुमान जी को ज्ञान लेने की बात आई तो किससे ज्ञान लेना चाहिए, तो सूर्य के पास गए थे। तो रोज जाते थे, उनकी जो पाठशाला थी वो सूर्यदेव के साथ थी। सूर्यदेव इधर से उधर दिन भर करते और हनुमान जी साथ साथ में ज्ञान लेते रहते, शाम तक पूरा हो जाता फिर आ जाते, फिर अगले दिन प्रारंभ। तो जब दक्षिणा देने की बात आई, गुरु दक्षिणा, तो उस समय सूर्यदेव ने कहा कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, सदैव उसके साथ रहना। और यही कारण था कि जब वाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ चले गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अपने गुरु सूर्य को कि मैं सदैव आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो सूर्य पुत्र हुए सुग्रीव, बृहस्पति के पुत्र हुए तार, और कुबेर के पुत्र हुए गंधमाधन, विश्वकर्मा के पुत्र हुए नल, अग्नि के पुत्र हुए नील। ये सारे बड़े प्रतापी वानर थे, कोई साधारण वानर नहीं थे। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि ये जितने भी वानर प्रकट हो रहे थे, एक एक वानर में सारे ब्रह्मांड को नाश करने की शक्ति थी, बड़े विशाल थे ये। ये तो केवल वानर रूप लिया था क्योंकि भगवान की सहायता करनी थी, और रावण ने, रावण मरना भी इन्हीं के हाथों, परास्त इनके हाथों रावण को होना था, मनुष्य और वानर, इसीलिए वानर रूप लिया। भगवान ने भी मनुष्य रूप इसीलिए लिया ताकि वो रावण का वध कर सके, इसीलिए वो अपने रूप को त्याग कर यहाँ पर आए थे। तो ऐसे अलग अलग देवताओं से अलग अलग वानर हुए, वायु से हनुमान जी हुए, जिनका वर्णन बहुत विस्तार में होना चाहिए। हनुमान जी का भी वर्णन करेंगे जब समय आएगा, तभी तो राम जन्म की कथा है, इसीलिए राम जन्म की बात करेंगे। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर सब प्रकट होने लगे ताकि भगवान की लीला में भाग ले सकें, भगवान को सहयोग कर सकें, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिलता है कि हम भगवान की सेवा कर सकें, हमारे जीवन की पूर्णता यही है। अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा के लिए लगा सकें, देखिए इन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया, प्रकट ही इसीलिए हो रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है, बस कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। कितना सुंदर वो जीवन होगा, कितना शांतिपूर्ण, कितना संतुष्टि प्रदान करने वाला वो जीवन होगा जो जीवन केवल कृष्ण को समर्पित हो, श्री राम को समर्पित हो, कोई और इच्छा नहीं। ये शुद्ध भक्ति है। और ये जो वानर यहाँ प्रकट हो रहे हैं, ये सब इसी शुद्ध भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे इन सब ने जन्म ले लिया और बहुत भर गए थे। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि सारी पृथ्वी पर भर गए वानर। ऐसे नहीं कि कुछ, ये तो हमने कुछ नाम आपको थोड़े बहुत बताए जो प्रमुख थे वानरों में, लेकिन करोड़ों करोड़ों वानर प्रकट हुए और सब देवताओं के अंश थे और सब बड़े शक्तिशाली थे। आगे चलकर वाल्मीकि मुनि वर्णन करेंगे कि कितने वानर थे भगवान की सेना में। तो जब सेना का वर्णन करेंगे वो भी बताएंगे। उन्होंने वर्णन किया करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण थे, माफ कीजिए वानर थे। तो ऐसे सारे वानर सब प्रकट होने लगे। और फिर जब 12 महीने बीत गए, अर्थात 6 ऋतुएं समाप्त हो गईं, हर एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, जैसे जब 6 ऋतु समाप्त हुई तब फिर भगवान श्री रामचंद्र के जन्म का समय आया। 12 महीने बाद भगवान प्रकट हुए थे और ये बहुत सुंदर समय था। वाल्मीकि मुनि और अन्य रचनाकारों ने भी वर्णन किया है कि उस समय जितनी भी ग्रहों की स्थिति थी वो सब ठीक हो गई, सब कुछ ठीक। आगे चलकर जब रामचंद्र जी का नामकरण हुआ तो दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था, इसकी जरा कुंडली देखकर तो बताइए कोई दोष इत्यादि तो नहीं है। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये आप क्या पूछ रहे हैं, इसमें तो दोष ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कहीं। तो सारे जो योग लगन ग्रह बार स्थिति, सारी जो तिथियां थी, योग थे, लग्न थे, सब ठीक हो गए। जैसे जब कोई बड़ा आदमी आता है तो बाकी सारे लोग अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ तो स्वामी आ रहे हैं तो सारे ग्रहों को अटेंडेंस लगानी थी, तो एक साथ एक लाइन में योग लगन ग्रह बार तिथि सब एक लाइन में खड़े हो गए कि अब श्री राम आने वाले हैं। तो सारी स्थितियां अनुकूल हो गई, बहुत सुंदर रमणीय वातावरण हो गया, ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो गई जब श्री राम के जन्म का समय आया। लेकिन अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि हम श्री राम के जन्म का वर्णन करें, तो अगले मंगलवार को कथा प्रारंभ ही श्री राम के जन्म से होगी और जन्म के साथ साथ उनकी बाल लीलाएं, उनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया है जो शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुनी होंगी। तो श्री रामचंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं और जब भगवान का जन्म हुआ तो कौशल्या देवी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की थी, तो उन प्रार्थनाओं का भी वर्णन अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का और फिर प्रसाद मांगेंगे। एक प्रश्न है छोटा सा, जब तक भगवान के दर्शन होते हैं हम कई